बाबा तो बस मेरा है।
आज हमारी तपस्या को एक स्थिति का रूप देने के लिए हम सब के बीच परम आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं। हमारे इस नेपाल और दिल्ली के इस संगठन में राजू भाई जी हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज आप हम सबके बीच बहुत सुंदर स्थिति बनाने वाला और जिनके जीवन का अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो बात उस विषय के रूप में स्पष्ट करेंगे। सदा अचल अडोल एक रस उद्धार मूर्त एवं उदाहरण मूर्त। बहुत लंबे अनुभवी अलौकिक समर्पित जीवन की यात्रा से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। साकार बाबा की समय से आपके परिवार में ही बाबा का ज्ञान आपको मिला। 71 में आप पहली बार मधुबन आए और तब से आपने अपने जीवन में निश्चित किया कि मेरा जीवन समर्पित हो तो भगवान के काम में। 72 से आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है। यज्ञ की अलग अलग विभागों की सेवाएं करते करते 76 से आप हिंदी एवं सिंधी मुरली टाइप करने की ड्यूटी कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक मुरली के साथ बाबा के महावाक्यों को हम सब के बीच पहुंचाने के निमित्त आत्मा हो। वर्तमान समय आप मुरली एवं फोटोकॉपी डिपार्टमेंट यज्ञ का संभालते हैं, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट विंग के वाइस चेयरमैन के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सब के बीच प्रति मास जो पत्र पुष्प आता है, दादी जी की तरफ से पत्र आते हैं, बाप दादा की अव्यक्त मुरलियों का इसेंस आता है, जनवरी की तपस्या मास की तपस्या भट्टी और पुरुषार्थ की जो विचार सागर मंथन की हुई पॉइंट्स आती है, उन सब को हम सब तक पहुंचाने के लिए उन सब को अलग अलग मुरलियों से एक पेपर में लाने के निमित्त आत्माएं हैं। और देश और विदेश में आपने अपनी विशेषताओं और सेवा की विशेष खुशबू फैलाई हुई है। दीदी मनमोहिनी की पालना से आपने यज्ञ सेवा शुरू की है और जो आपकी स्थिति में आपके व्यवहार में सब हरेक आत्मा अनुभव करती है, तो ऐसे राजयोगी राजू भाई जी हम सब के बीच पधारे हैं। पुनः पुनः हम सब के बीच राजू भाई आपका दिल से स्वागत करते हैं। और चलो चले तपस्या से स्थिति की ओर कि कैसे हम अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल उद्धार मूर्त एवं उदाहरण मूर्त बनाएं। परम आदरणीय राजू भाई जी
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सब अपनी ऐसी अचल अडोल और एक रस स्थिति बनाने के लिए विशेष योग तपस्या कर रहे हैं। हमारे सामने हमारे मीठे सहकार बाबा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और हमारी दादियां दादी प्रकाशमणि दीदी मनमोहिनी और वर्तमान समय हमारी दादी जानकी जी। हम सब जानते हैं इन दादियों ने इस यज्ञ को कैसे निर्विघ्न बनाया, अनेक परीक्षाओं और परिस्थितियों को पार करते करते अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति से यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रहे हैं। बहुत से पुराने भाइयों को दादाओं को भी हमने देखा, दादियों को भी देखा जिन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बनाई है। उसका विशेष आधार स्तंभ बाबा ने जो मुख्य चार सब्जेक्ट हम सबको पढ़ाई हैं, उन चारों सब्जेक्ट को विशेष अंडरलाइन करके उस पर विशेष मनन चिंतन अभ्यास करके ऐसी स्थिति को प्राप्त किया। हम सभी भी बाबा की वही मुरलियां पढ़ते हैं, कोई के लिए अलग से पढ़ाई नहीं है। चाहे वो आज 80 साल वाले पुरानी दादियां हैं, 50-60 साल वाली हमारी दादियां दीदियां भाई हैं, चाहे अभी 2-4-6 मास या 2-4 साल से आए हुए भाई बहने, सभी के लिए पढ़ाई एक ही है, वही मुरली सबको मिलती है। मुरली से ही चारों सब्जेक्ट पर हर एक पुरुषार्थ करता है और मुरली के आधार से ही हर एक ने अपनी स्थिति को महान बनाया है। बाबा ने हम सबको योग के पहले ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण किया, ज्ञानी तो आत्मा बनाया और ज्ञान से स्व की पहचान मिली, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं किस लिए यहां आया हूं। जो आत्माएं ज्ञान को स्वरूप में ले आती मास्टर नॉलेज फुल बन करके रहती हैं। मास्टर नॉलेज फुल की यादगार हमारे भारत के अंदर श्री गणेश की बहुत अच्छी पूजा की जाती है, विघ्न विनाशक विद्यापति के रूप में आप सब जानते हैं। श्री गणेश के अनेक मंदिर भी बने हुए हैं और कोई भी शुभ कार्य जब प्रारंभ करना होता तो श्री गणेश का एक सिंबल निकाल करके पहले उसकी पूजा आराधना करते ताकि कोई भी रुकावट ना आए, विघ्न ना आए। ये हमारी नॉलेजफुल स्टेज की निशानी है। जिन आत्माओं ने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा उनकी तीन स्थितियां बन जाती हैं। एक, आने वाली हर परिस्थिति को परीक्षा को दूर से पहचान सकते परख सकते हैं, नॉलेज फुल हैं, क्यों क्या कैसे अनेक प्रश्नों में उलझते नहीं हैं, जानते हैं ये सब बातें। जितना हम सत्य मार्ग को अपनाते हैं आगे बढ़ते हैं परीक्षाएं आती हैं हम उनको सहज पार कर सकते हैं। नॉलेज फुल हैं और पार्ट बजाते हुए हर आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आते हुए साक्षी दृष्टा हैं। एक बहुत ऊंची स्टेज है ज्ञानी तू आत्मा की। अगर वो अपनी स्थिति को अच्छा लडोल एक रस रखना चाहता है तो अपने और अन्य आत्माओं के पार्ट को देखते हुए विशेष साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाना होगा। अगर हम किसी के भी पार्ट को देखकर अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं तो खुद भी हलचल में आते, वातावरण को भी भारी कर देते और जिनको भी हम उस बात की जानकारी देते हैं वो भी हलचल में आ जाते हैं। इसलिए साक्षी होकर के अपने और अन्य आत्माओं के पार्ट को देखना, हमने दादियों को देखा, नॉलेजफुल थी, जानती थी इस आत्मा ने ये कर्म किए हैं, इसकी ये भोगना है, इसका ये परिणाम है, जानते हुए शुभ भावना रखती, समय पर इशारा भी करती। लेकिन अगर वो नहीं सुधरता, नहीं कोई कारण से परिवर्तन कर पाता तो साक्षी दृष्टा बन जाते। बाबा भी यही पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब अव्यक्त रूप में बाबा के पार्ट को देख रहे हैं। आज 48 वर्षों से बाबा अपने बच्चों को कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते, कहां से कहां पहुंचाया। जब मैं अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करता हूं, एक एक बात, एक एक धारणा कितना स्पष्ट रूप से बाबा ने हम सबके सामने रखी, वायदे कराए, प्रतिज्ञाएं कराई। मैं समझता हूं कितनी बार बाबा ने क्रोध मुक्त बनने की मुरलियां चलाई होंगी, पवित्रता की कितनी गहराई और कितनी बार उसकी प्रतिज्ञाएं कराई, स्पष्टीकरण दिए, बहुत उम्मीदें रखी। बाबा ने बहुत आशाएं रखी और शिक्षाएं दी। लेकिन अगर बच्चों में फिर भी कोई कमी कमजोरी रह गई तो नॉलेजफुल है, जानता है किसका क्या परिणाम होगा, अपनी स्थिति को बिगाड़ता नहीं। बाबा के चेहरे से कभी मुस्कुराहट गई नहीं होगी। मैंने बाबा के अव्यक्त पार्ट में विशेष अंडरलाइन किया है क्योंकि ड्रामानुसार मुझे जब से मैं बाबा के पास आया 72 से, शुरू से ही दीदी दादी ने बाबा के साथ बैठकर पूरे नोट्स लेने की सेवा दी। जो बाबा बोलते हैं वह तुम लिखो। अगर बाबा 12 घंटे रहे तो मैं 12 घंटे ही बैठा, और जितना बाबा ने बोला है मैं समझता हूं 73 के बाद आज तक बाबा के एक एक महावाक्य इन्हीं हाथों से लिखे गए हैं। बाबा के पार्ट को, अव्यक्त पार्ट को देखते कितना बाबा प्यार से सिखाते, जानते हैं कि बच्चे ने गलती की है, ये भूल हुई है, ऐसा हो रहा है, लेकिन सामने आ जाता है तो उसकी इतनी विशेषताओं का वर्णन करते जिससे वो बहुत ऊंची स्थिति में स्थित हो जाए। इशारा जरूर देते, शिक्षाएं देते हैं, लेकिन बहुत महिमा करके, धरनी तैयार करके फिर कुछ एक शब्द इशारे में कहते हैं। लेकिन अगर वो बाबा का बच्चा कोई कारण से परवश स्थिति में है, नहीं सुधार कर पाता, तो बाबा अपनी स्थिति को डगमग नहीं करता, मुस्कुराता है सिर्फ। क्यों क्यों मुस्कुराता है? नॉलेजफुल है, उसके पास बच्चे के आदि, मध्य और अंत तीनों चीजों का ज्ञान है। वर्तमान समय कोई ऐसी परवश स्थितियां हैं जिससे वो अपना सुधार नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाबा जानते हैं इसी बच्चे को मैंने ऐसा बनाया था और इसको ही बनाना है। इसलिए वर्तमान स्वरूप को देख करके अपनी स्थिति में ज्यादा उलझन में नहीं लाता। ठीक है, बाबा शिक्षा देगा, सावधानी देगा, आगे बढ़ाएगा, महिमा करेगा और फिर साक्षी दृष्टा हो जाएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को संगठन के बीच में, ऐसे वातावरण के बीच में, जबकि हम सब जानते हैं हर क्षेत्र में अति हो रही है, इस ब्राह्मण संसार के अंदर भी हर एक पुरुषार्थी के आगे कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार के संस्कार और पेपर्स आ रहे हैं। हर एक के प्रति ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि सब संपन्नता की ओर पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, रेस चल रही है। इसलिए किसी की डगमग स्थिति को देख करके मुझे डगमग नहीं होना है। अपनी स्थिति पर फुल अटेंशन दें और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा हम सबको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। स्वचिंतन करें, शुभ चिंतन में रहें और शुभ चिंतक वृत्ति से आत्माओं को सहयोग दें। ये नॉलेजफुल आत्मा की निशानी है। जिसने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है, वो आत्माएं छोटी मोटी बातों में अपने आप को डगमग नहीं करती, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझती नहीं है। हर दृश्य में साक्षी दृष्टा बन करके उसके आदि मध्य अंत को समझ करके बहुत निश्चिंत स्थिति में रहती हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान में विशेष करके स्वयं, बाप और ड्रामा, ये तीन बिंदियों का ज्ञान बाबा ने हम सबको यथार्थ रूप में दिया है। और जिसको बिंदी लगाना आ जाए, वैसे बाबा कहता है बिंदी लगाना तो बच्चे को भी आता है, ऐसे लगाना ही सिर्फ है, क्वेश्चन लगाना तो टेढ़ा है, आश्चर्य की मात्रा लगती है, किसी की नहीं लग पाती। बिंदी तो लगाया जा सकता है, लेकिन यही बिंदी स्वरूप की स्थिति, आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, सिर्फ आत्मा आत्मा रखने की बात नहीं है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और सामने वाले को भी आत्मा देख करके हम बात करें, मैं आत्मा हूं, तो ये देह भान अपने आप समाप्त होता है। उस भान में हम जब रहने लगते हैं, क्योंकि जितनी हमारी स्थिति को हलचल में लाने वाली बातें हैं, जब हम एक रस स्थिति कहते हैं तो अनेक रसों में जब आत्मा भटकती है, थोड़ा गहराई से इस बात को समझना, कितने प्रकार के रस हैं आज की दुनिया में। हर आत्मा या तो कनरस के अधीन है, या जीव रस के अधीन है, या आंखों के रस के अधीन है, कोई न कोई कर्म इंद्रिय का रस उसको अपने आकर्षण में आकर्षित कर रहा है, इसलिए वो एक रस स्थिति नहीं बना पाता। एक रस स्थिति उसकी बनती है जो एक बाबा की याद का रस प्राप्त कर लेता है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर लेता, एक से सर्व प्राप्तियां करना जानता है, उससे ये रस आकर्षित नहीं करते। और इन रसों से अगर हमें ऊपर उठना है तो ज्यादा मेहनत का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन केवल आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें, इस देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास कर लें, ये कर्म इंद्रियों के रस छूटते जाएंगे। जिसको अतीन्द्र सुख का अनुभव हो गया, परमात्म सुख का अनुभव हो गया, वो इंद्रिय सुख से ऊपर उठ जाता है। और जब इंद्रिय सुख से इन रसों से हम ऊपर उठते हैं तो एक रस रह सकते हैं। तो आत्मिक स्वरूप बिंदु रूप की स्थिति बन जाती, देह भान से डिटैच हो जाते, दैहिक रस आकर्षण करना बंद कर देते हैं, एक रस स्थिति बन जाती। बाबा जो हमारा सर्व संबंधों से साथ निभा रहे हैं, जिनमें सर्व संबंधों की रसना हम सबको प्राप्त हो रही है, लौकिक जितने संबंध मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते थे, उन सर्व संबंधों की रसना एक बाबा से ली जा सकती है, कई आत्माएं ले रही हैं। चार मुख्य संबंध तो हैं ही, बाप, शिक्षक, सतगुरु, साजन के रूप में। हम सब अनुभव करते हैं कि बाबा कैसे इन चारों संबंधों के आधार से समय प्रसमय हम सबके साथ हैं। दूसरे संबंध है, कोई दोस्त का अनुभव करना चाहता है, कोई बच्चे के अनुभव में रहना चाहता है, कोई बीमार रहता है उसको सर्जन चाहिए। तो ये सब संबंध एक बाबा से जिन आत्माओं ने जोड़े हैं, सर्व संबंधों की रसना जिन्होंने एक बाबा से ली है, उन्हें कोई भी दैहिक संबंधों के रस आकर्षित नहीं करते। और जितनी आत्माएं आज हलचल में आती हैं, जिनकी स्थिति अचल नहीं रह पाती, उसका एक मूल कारण आप देखना, वो दैहिक आकर्षणों में रस लेना चाहते हैं, देहधारियों से संबंध बना करके चलते हैं, उनमें अपेक्षाएं रहती हैं और उनमें आकर्षण होने के कारण स्थिति डगमग होती है। तो ज्ञान स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं साक्षी दृष्टा और दृष्टांत रूप बन जाती है। हम सबको ऐसा उदाहरण रूप बनना है, दृष्टांत रूप बनना है, जो सब कहें ये लोग भी प्रवृत्ति में रहे, लोगों ने इतने सारे कार्य व्यवहार को संभाला, लेकिन संभालते हुए भी हर पेपर को इतनी सहज रीति से पार कर लिया, जो कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठा ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। आप बाबा की जीवनी पढ़ी है, जानते हैं, ब्रह्मा बाबा हम सब के सामने एक बहुत ऊंचे उदाहरण रहे हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो बाबा के सामने ना आई हो, हर परिस्थिति को बिल्कुल अंगद की तरह अच्छा लडोल रह करके सहज पार कर लिया, वर्णन नहीं किया, किसी के आगे कहा नहीं कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। चलो ब्रह्मा बाबा के साथ तो आप कहेंगे शिव बाबा था, सर्वशक्तिमान था, सर्वसमर्थ था, बाबा को निश्चय था कि वो बाबा कराएगा, बाबा बैठा है, बाबा साथ है, इसलिए अपनी स्थिति में बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, कोई बात आएगी बाबा बैठा है, इतना टूट निश्चय था। लेकिन उसके बाद हमने देखा दादी जी, दीदी और दादी की जोड़ी बनी, इन दोनों दीदी दादियों ने, उनके सामने और ज्यादा पेपर आए, सब समझा कि इनका बाबा चला गया, अभी कौन है इनके साथ। लेकिन दीदी दादी ने इतना संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के कि बाबा हमारे छत्र छाया के रूप में साथ है। मैं अभी योग को आपको 7-8 बातों के बीच में सुनाता हूं, क्योंकि योग एक इतनी गहरी सब्जेक्ट है। जिन आत्माओं ने योग के प्रयोग किए हैं, जिन्होंने योग को अपना आधार बनाया है, योग के गहरे अनुभव किए हैं, उन्होंने हर परिस्थिति को ऐसे पार किया जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, नथिंग न्यू, बहुत सरल रीति से पास करते गए, हिलने नहीं दिया, ना अपने को हिलने दिया, ना संगठन को हिलने दिया। बातें आती थी, चलो सब योग करो। मुझे याद है इस मधुबन की इस स्थान पर जहां बैठे हैं, दादी जी ने हर शनिवार को, लगभग जब शनिवार आता था, कहती थी संडे है, कल छुट्टी के दिन है, माना जो नौकरी धंधा करता है, हॉस्पिटल वाले भी थे, आज रात को 2 से 5 योग करेंगे। सबके लिए नहीं कहते थे, कंपलसरी सबके लिए नहीं था, जिनमें रुचि है, जो उमंग उत्साह वाले हैं, सब आ जाओ संगठन में। और दादी जी खुद उठ करके 1:30 बजे उठ करके यहाँ पर 2 बजे के अंदर अंदर आ जाते थे सामने बैठ करके। और ये सब नहीं था, ये को कुर्सी सोफे नहीं थे हमारे पास, गद्दी लगा देते थे, अपनी अपनी गद्दी पर सब बैठते। और दादी जी बीच बीच में हर आधा घंटे के बाद 2 शब्द बोल करके योग की अच्छी विधि से फिर योग कराते थे। कई प्रकार के विघ्न है, क्योंकि जब यज्ञ आगे बढ़ता गया, चाहे वो समाज के द्वारा था, चाहे सरकार के द्वारा था, चाहे इनकम टैक्स की बातें थी, कोई वृद्धि होती, तो आप सब समझते हो कई प्रकार की बातें आती हैं। हर पेपर को, हर परिस्थिति को योग के बल से पार किया। कोई तांत्रिक विद्या वाले भी, तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले भी, दादी ने कभी ये नहीं कहा कि इसके लिए तुम फलाने के पास जाओ। योग एक कवच है, समझने की कोशिश करना, योग कवच है। जैसे योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाता है तो इस ड्रेस के नीचे लोहे का या मजबूत कवच होता है, वो पहन लेता है। कोई कैसा भी वार करे, बंदूक चलाए, तलवार चलाए, वो बेधड़क होकर के उस युद्ध के मैदान में उतर जाता है। हम सब जानते हैं माया जब विदाई लेने का समय है, अंतिम वार अजमाएगी किसी न किसी रूप में। माया और प्रकृति, ये 10 शीश वाला रावण है, 5 माया के हैं और 5 शीश प्रकृति के हैं। किसी न किसी रूप में हर ब्राह्मण आत्मा के आगे ये 10 रूप किसी न किसी संस्कार में प्रकट होते हैं। अब इसके लिए योग एक कवच है, उसको हमें धारण करना है। और कवच कैसे धारण करना है, ये है लाइट का कवच, स्थूल लोहे का कवच नहीं है। जब हम सब अमृत वेले आंख खुलती है, अपने एक लाइट स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश हुई और शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प लेकर के शरीर के चारों तरफ एक लाइट का कवच बना करके प्रवेश करें। बाबा आते हैं, अनुभव किया होगा, कईयों को अनुभव होते हैं, बाबा निराकार शिव बाबा जब दादी के तन में आते हैं तो अकेले नहीं आते, किसको लाते हैं साथ? ब्रह्मा बाबा कैसे आते? लाइट का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, फरिश्ते का शरीर है। तो जब परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो सूक्ष्म शरीर लेते हैं पहले, सूक्ष्म वतन में। और सूक्ष्म शरीर वो लाइट का जो शरीर है, वो शरीर और शिव बाबा दोनों आत्माएं दादी के तन में प्रवेश होती है, अव्यक्त पार्ट जो चलता है। कई आत्माओं को अनुभव होता है, जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं वो देखते हैं, ऐसे आंखों से भी कई बार अनुभव करते, स्थूल में भी दिखाई देता कि बाप दादा जब आए आंख खुलने के पहले तो एक बहुत सुंदर ओरा बन गया, आभा मंडल बन गया, दादी का फेस भी चेंज होता और वो लाइट तो प्रवेश हुई, बाप दादा दोनों आ गए। ये कवच है, हम सबको इसका अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परम धाम से उस लाइट के कवच से इस शरीर में प्रवेश हो रही हूं, जिसको बाबा एक शब्द देते हैं, मैं अवतरित होने वाली अवतार आत्मा हूं। रोज ये स्मृति रहे आंख खुलते ही, मैं आज इस शरीर में अवतरित हुआ हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो जब लाइट का शरीर धारण करेंगे तो लाइट का शरीर हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। शायद आप लोगों ने बाबा की पुरानी मुरलियों की स्टडी की हो, उसमें बाबा ने एक बात कही है, अंत समय में चारों ओर तमोगुण बढ़ेगा और तमोगुणी आत्माएं अटैक करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लाइट के शरीर में हैं, आप लाइट रह रहे हैं, ज्योति बिंदु आत्मा का अभ्यास किया है, तो वो जब सामने आएंगे तो ये शरीर आपका मिट्टी का दिखाई नहीं देगा, उनको वार नहीं करेंगे, झुक जाएंगे, क्योंकि आप उनके आगे लाइट आ जाएगी। आप कहेंगे तो शायद कोई कहानी के रूप में आप बता रहे हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा अभ्यास इसका किया। हमारे बाबा की जीवन कहानी में बात आती है, बाबा का बहुत विरोध हुआ जब ये विकारों की बात छोड़ने की बाबा ने की। कई लोगों ने समझा कि बाबा ही ये सुना रहा है, शिव बाबा को तो कोई पहचाना नहीं, इसलिए बाबा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये बातें जो घर घर में झगड़े हो रहे हैं पवित्रता के कारण, सब खत्म हो जाएंगे। तो किसी ने कुछ सरदारों को पैसा दे करके कहा कि बाबा को खत्म कर दो, बाबा को यहां से साफ करो, हटाओ। और वो लोग यहां आ गए। पहरे पर जो बहनें थी, उस समय बहनें ही पहरा देती थी, शुरू में भाई तो कम थे, बहनों को पता चला कि लोग ठीक भावना से नहीं आए हैं, अच्छे लोग नहीं लगते हैं, बड़े खूंखार जैसे भयानक लगते हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश की और कहा तुम यहां बैठो, बाबा अभी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, और उनकी भावना थी खत्म करेंगे। बाबा के पास बहनें आई, एक दो रोक करके रखी, एक आई पीछे से बाबा को पूछने के लिए, बाबा ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक तो नहीं लगते हैं और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं, क्या करूं। बाबा ने कहा बच्चों को आने दो, बच्चों को आने दो। और बाबा अपनी गद्दी पर एकदम तपस्या में बैठ गए, योग में, वो लाइट का कवच पहन लिया। ज्यों प्रवेश हुई अंदर, कमरे के अंदर आए, बाबा उसी लाइट में बैठा था और उनको गुरु नानक का साक्षात्कार हो गया, बाबा गुम हो गया। और जब गुरु नानक को साक्षात देखा तो सारे सरदार थे, सब पैर लेट गए, माफी मांगने लगे, मुझे बहुत गलती हो गई मेरे से, मुझे पता नहीं था आप मेरे साक्षात गुरु हैं, गुरु नानक देव की आत्मा है। अब बाबा को पता नहीं है क्या इनको हो रहा है। बाबा कहता बच्चे उठो, बच्चे उठो, बच्चे उठो। अब वो तो बेचारे सब नॉर्मल हो गए कि मैं किस भावना से आया था, ये कौन मेरे आगे बैठा है। थोड़ी देर में बाबा ने उनको उठाया, बिठाया, बड़े प्यार से उनको प्रसाद खिलाया। फिर उन्होंने खुद कबूल किया, बाबा मेरे से गलती हो गई, मुझे इतना पैसा दिया गया था कि आपको खत्म करना है, अब मैं इसी भावना से आया था, लेकिन मुझे आज ये लगा कि आप तो साक्षात गुरुदेव हैं, हमारे गुरु नानक देव हैं। बाबा ने कहा कोई बच्चे कोई बात नहीं, चुपचाप टोली खाई और चले गए। ऐसी परीक्षाएं भी अंत समय में किसी के सामने भी आ सकती हैं। उस परिस्थिति के अंदर, ऐसी परीक्षाओं में हमारी स्थिति अचल रहे, अडोल रहे, निर्भय रहे, एक रस रहे, क्योंकि डर जाएंगे ना, तो कोई ऐसा आ जाएगा तो घबरा जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन योग को एक कवच बनाओ और उस कवच को रोज धारण करो। सिर्फ मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, यही अभ्यास योग में नहीं करो, बहुत वैरायटी रूप से, कभी कवच धारण किया लाइट का, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश होकर लाइट होकर के कर्म कर रही हूं। अनुभव करोगे तो सामने वाले को भी अनुभव हो जाएगा। दूसरा एक अभ्यास योग में है, जैसे जब बहुत बरसात, गर्मी, धूप से बचते हैं तो छतरी साथ रखते हैं। योग एक छत्र छाया है, बाबा की याद छत्र छाया के रूप में मुझे आत्मा के साथ साथ रहे, कितनी भी माया की गर्मी हो, कितना भी वातावरण खराब हो, लोग नेगेटिव हों, बहुत बुरी दृष्टि वृत्ति वाले हों, लेकिन जिनके साथ बाबा की छतरी छत्र छाया के रूप में रहती, याद की छतरी है ये, और कोई संकल्प नहीं करना, लेकिन जैसे बाबा की याद मेरे ऊपर चारों तरफ छतरी के रूप में है। बाबा कई बार एक अनुभव कराते हैं, बताते हैं, बाबा का बृहद हस्त मुझ आत्मा के सिर पर छतरी के रूप में है, ये छत्र छाया बन गई, जैसे अकेले नहीं है हम, याद ही छत्र छाया है। कितनी भी तेज आंधी तूफान हो, जो बाबा के वरदानी हस्त के नीचे रहने वाली, छत्र छाया के नीचे रहने वाली आत्मा है, का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, सेफ है, अचल है, अडोल है, एक रस है, हिलते डुलते नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात आ जाए, बाबा तीन पोज सुनाते हैं ब्राह्मणों के, तीन पोज बनाते हैं। एक पोज होता है जो कभी एकदम निराश आत्माएं नाटे बन जाते हैं, दिल से कष्ट, तीन होते हैं ना, एक नाटा हो, एक लंबा हो, एक मोटा हो, समझ रहे हैं ना, हिंदी समझ में आ रही है ना, मैं नेपाल के भाइयों को समझ रहे हैं, नाटा समझते हैं ना, भवना जिसको कहते हैं, एक नाटा है, एक बहुत लंबा है और एक बहुत मोटा है। ब्राह्मण आत्माएं भी इन तीनों पोज को धारण कर लेती हैं, कभी एकदम निराश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, इसको बाबा कहता है ये देशिकस्त की बीमारी है, उमंग उत्साह के जो आर्टरीज है ना ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, फिर हार्ट पंप करना बंद कर देता है। इसलिए सदा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बड़े से बड़ी बात आ जाए, जिसका साथी स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, अगर आपका संपूर्ण निश्चय है, कोई भी बात में आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, निश्चिंत, बाबा पार कर देगा, मैं भले कमजोर हूं, वो सर्वशक्तिमान है, साथी के पास बहुत शक्ति है। जैसे कोई आज की दुनिया में भी कोई ऐसे कमजोर भी होते हैं, छोटे घरों के होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन नशा इतना होता है, अगर उनका कोई प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से बड़े से संबंध संपर्क होता है, कहते छोड़ो हमारे बैठे हैं ना, ठीक कर लेंगे सब, वो मदद कर देंगे, कोई बात होगी वो देख लेंगे, कहीं वो कहेंगे अच्छा कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं आपका करा दूंगा। हम लोगों को नशा रहता है, अगर कोई ऐसे कमजोर आते हैं, हम कहते कोई चिंता नहीं करो, हम बाबा को कह देंगे, हो जाएगा, बैठा है ना सर्वशक्तिमान साथ। जब साथी हमारा इतना महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, तो छोटी छोटी बातों को सोच सोच करके मैं क्यों दिल शिकस्त हो जाऊं, क्यों निराश हो जाऊं। इसलिए इस बीमारी से सब बच के रहना, नहीं तो नाटे हो जाओगे, बोने। और अगर बहुत सोचने की आदत है, कईयों को बहुत सोचने की आदत, कोई छोटी सी बात हो गई पूरी पूरी रात सोचते रहेंगे, नींद फिट जाएगी, फिर बीपी बढ़ जाएगा, उनको बाबा कहता है ये बहुत लंबे हो गए, सोच सोच करके लंबू हो गए, लंबू भी अच्छे नहीं लगते। और कोई इतनी जवाबदारियां ले लेते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये प्रवृत्ति, बाबा कहता मैं संगम पर आया हूं, तुम सब जवाबदारियां मुझे देख करके हल्के हो जाओ, लेकिन वो सब उठाते उठाते इतने मोटे हो जाते, इतने बोझ वाले हो जाते, चलना ही मुश्किल हो जाता। ध्यान रखना, हम सब बाबा के योगी बच्चे हैं, जिनके साथ बाबा है, सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, छत्र छाया के रूप में रहता है, उनको अधिक सोचने की, कमजोर संकल्प करने की, ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कभी भी अचल अडोल स्थिति नहीं बन सकती, एक रस स्थिति नहीं बन सकती। योग एक किला है, जैसे किले के अंदर जब किले बनाए जाते थे, अभी तो किले नहीं बनते, लेकिन हमारे पुराने राजाओं के किले होते थे और किले की दीवारें बड़ी मजबूत होती थी, बहुत ऊंची होती थी। आप भारत के अंदर देखेंगे ना, बहुत सारे किले बने हुए हैं राजाओं के, वहां भी हैं नेपाल में, काठमांडू में, लेकिन ये जो किले बने राजस्थान में तो बहुत सारे हैं, अभी सब खंडहर हो गए, टूट फूट गए, लेकिन कहीं से भी कोई शत्रु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक उस घर का कोई भेदी न हो। भेदियों ने खोल दिए दरवाजे, लेकिन अधिकतर किले जब बने ना, कोई अटैक नहीं कर पाया, उसके बीच में सारी सेना और सारी प्रजा सुरक्षित रही। बाबा कहता है योग एक किला है, जहां पर भी जिस सेवा केंद्र पर आप रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां योग को ऐसा प्रज्वलित रखो, योग की ज्वाला ऐसी प्रज्वलित रखो जो चारों तरफ उसकी बाउंड्री इतनी मजबूत हो जाए, कोई भी भटकती हुई आत्माएं और कोई भी बुरी दृष्टि वृत्ति वाली अशुद्ध आत्माएं साकार में जो हैं, दोनों ही वार नहीं कर सकती, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, अगर योग का किला मजबूत है तो। इसके लिए हम सबको क्या करना होगा, जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां पर केवल दो तीन बातों का ध्यान रखो। एक तो बाह्य मुक्तता का वातावरण न हो, हंसी मजाक, साधारणता, लौकिकता। अगर किला बनाना है तो स्थान को किला के रूप में बदलना है। व्यक्त और व्यर्थ, कई स्थानों पर सारा दिन ज्ञान चर्चा एक घंटा होगी तो 12 घंटा 10 घंटा वहां पर बैठ करके व्यक्त बातें करते हैं। अगर व्यक्त और व्यर्थ बातें उस स्थान पर हो रही हैं, चल रही हैं, तो वही व्यक्त और व्यर्थ बातें कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे सामने क्रिएट करती हैं। अगर हम किला बनाना चाहते हैं तो एक रूहानियत, अलौकिकता और दिव्यता। मैं बाबा के तीन शब्द आपको देखता हूं। रूहानियत, जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो चेहरे पर, दृष्टि में रूहानियत दिखाई दे, बाह्य मुक्तता वाली हंसी मजाक वाले चिन्ह चेहरे से न दिखाई दे। दिव्यता माना यूनिटी, पवित्रता, और अलौकिकता, कोई लौकिकता नहीं है, साधारणता नहीं है। जिस स्थान पर ये तीनों चीजें हैं, वो स्थान एक योग का किला बना देता है, और उस किले के अंदर कोई भी प्रकार का शत्रु वार नहीं कर सकता। अगर हम अपनी स्थिति को अचल, अडोल, एक रस रखना चाहते हैं, माया के साम्राज्य में रहते हुए भी अपने को एक उदाहरण रूप बनाना चाहते हैं, तो हम किले से बाहर न निकले, किले के अंदर रहें। जिस भी स्थान पर हो, ऐसे नहीं हम कहते सेंटर के ही वातावरण को ऐसा बनाया जाए, अगर प्रवृत्ति वाले सभी के सभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो उस स्थान को भी आप इन तीन चीजों से किला बना सकते हो। योग एक स्नेह की डोर है, जिस डोर के अंदर परमात्मा को बांधा जा सकता है। कहते हैं रस्सी में भगवान भी बंध जाते हैं। कौन सी रस्सी है? स्नेह की रस्सी, प्यार की रस्सी। सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हम सब के लिए बंधा हुआ है, लेकिन सच्चे स्नेही के साथ बंधा हुआ है, बहुत दिल का प्यार। इस दिल का प्यार होगा, जो हम कहेंगे बाबा करने के लिए आगे आगे आ जाएगा, जो संकल्प होंगे बाबा मदद कर देगा। ऐसे योग के और कई नाम बाबा देता है। योग एक यात्रा है, योग एक चुंबक है, योग एक वशीकरण मंत्र है, योग एक कला है, योग एक यंत्र है, योग चुंबक की तरह। जैसे आप अगर योग युक्त होकर के रहते हैं सेवा के पीछे अधिक भागने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार कई बहनों को ये बात कहता हूँ, टीचर्स को, हम सेवा 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 के पीछे भाग भाग करके अपनी बहुत एनर्जी नष्ट कर रहे हैं, कई प्रकार के टकराव पैदा हो रहे हैं। सेवा के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन ये जो रेस रीस सेवा की चल रही है उसके कारण स्थितियां बहुत डगमग हो रही हैं। अगर संगठन को एक चुंबक बना दिया जाए, सुइयां अपने आप आ जाएंगी, जो हमारे देवता धर्म की होंगी। वैसे भी चुंबक के ऊपर आकर्षित कौन होता है? जिस सुई पर जंक नहीं होती वो चुंबक की तरफ खिंचाती है। योग एक चुंबक है, और अगर योग युक्त आत्माएं किसी स्थान पर रह रही हैं, वहां ऑटोमेटिक खिंच करके आत्माएं आएंगी, उनको वाइब्रेशन आएगा कि शांति यहीं से मिल सकती है, सच्चा रास्ता इसी स्थान से मिल सकता है। जिस स्थान पर ऐसी योगी आत्माएं रहती हैं, कई स्थानों के हमने अनुभव सुने हैं, बाहर जाने वाले लोगों को चुंबक की तरह स्थान खींच लेता है, न चाहते भी अंदर आ जाते, कोर्स करते और बाबा के बच्चे बन जाते। बहुत सारे सेवा केंद्रों में वृद्धि जो हुई है, योगी आत्माओं की चुंबक से खींच करके लोग आए हैं। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते, कई पांच भी नहीं निकलते, दो भी नहीं निकलते, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी कोई कोई मुश्किल से निकलते हैं। लेकिन अगर योग का चुंबक बन करके हम रहें और जितनी आत्माएं हैं योग युक्त स्थिति में रहें, तो सेवा भी हो जाएगी, स्थिति भी अच्छी रहेगी और आने वाली आत्माएं निर्विघ्न रहेंगी। तेरे मेरे से खींच करके आई, खींचे तान में वो भी बेचारे डिस्टर्ब होते रहते। वशीकरण मंत्र है, मंत्र द्वारा किसी को भी वश किया जा सकता है, लेकिन किसको वश करना है, किसको वश करना है? मन को वश करना है। मन चंचल है, इस वशीकरण मंत्र के द्वारा मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में आ जाए, कर्मेंद्रियों पर शासन हो जाए, ऐसे योग को वशीकरण मंत्र के रूप में यूज करो। मन मनाभाव, आत्मिक स्थिति में स्थित हुए मन को ऑर्डर दे रहे हैं, जिधर जाना चाहे, जिधर ले जाना चाहे उधर जाए, भटकना बंद कर दे। इस वशीकरण मंत्र को यूज करो, जब चाहिए इस पर नियंत्रण किया, इसको यंत्र के रूप से यूज किया, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। योग अगर वैरायटी और नवीनता वाला है, कभी बोर नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं, और इंटरेस्ट जागृत रहेगा, योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, भागेंगे। योग एक अग्नि है, ज्वाला है, अगर शक्तिशाली याद है, एक बाबा के प्यार में लौलीन स्थिति है, सब विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विकर्म विनाश हो रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। साधारण याद चल रही है तो समय लगता है। दो विधियां हैं परिवर्तन की, देखा हुआ आपने, एक पूजनीय जो शालिग्राम बनता है, शालिग्राम कैसे बनता देखा है? मैं एक जगह गया था मॉरिशियस में, शालिग्राम दिखाया मुझे कैसे बनते हैं। एक सागर की लहरें बहुत तेज आती हैं पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, तो इतनी तेज लहरें आती हैं जो थोड़े छोटे टुकड़े पत्थर के पानी के साथ साथ जाते हैं, फिर लहर आती है, फिर ऊपर आते हैं, फिर आते हैं, नीचे जाते हैं, तो पत्थर घिसते घिसते बहुत सुंदर चिकना चिकना एक गोल गोल शालिग्राम बन जाता है, पूजनी हो जाता है। ये भी एक विधि है, अगर आप रोज बाबा की मुरली सुन रहे हो, लहरों में लहरा रहे हो, अच्छे संग में रहे हो, अच्छा ब्रह्मा भोजन कर रहे हो, बार बार लहरें आती हैं, पीछे नीचे ऊपर ले जाती हैं, पूजनीय बन जाओगे शालिग्राम। लेकिन एक है एकदम मूर्ति बन जाए, पूजने लायक बन जाए, वो छेनी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी से बनाई जाती है, उसके लिए योग पावरफुल चाहिए। शक्तिशाली याद, जल्दी से परिवर्तन दिखाई दे। कईयों को उस याद में बैठने का अभ्यास ही नहीं है, उसके लिए वो मेहनत ही नहीं करते। ज्वाला स्वरूप की याद जिसमें मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, इतने पवित्र और शुद्ध विचार हैं, शून्य स्थिति योग में नहीं है। कई सोचते हैं हमारे संकल्प चलना बंद हो जाए। अब संकल्प को अगर बंद कर दिया, अनुभव कैसे करोगे? जो साधारण है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, काम के नहीं, उन संकल्पों को अवॉइड करो। अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करो। ये एक संकल्प विमान के काम की, विमान की तरह हमको उड़ाते हैं। शुद्ध संकल्प किया, मैं एक लाइट के शरीर में हूँ, लाइट के वतन में हूँ, बाबा मेरा लाइट के वतन में आवाहन कर रहे हैं। चिंतन करते करते वो अनुभव होने लगा, अव्यक्त वतन की स्थिति का अनुभव हुआ। फिर मैं एक बिल्कुल ज्योति बिंदु, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, निराकारी वतन है जहाँ आत्माएं रहती हैं, उस परम धाम घर का चिंतन किया। और चिंतन करते करते लगन लग गई और मग्न हो गए, अनुभव होने लगे। तो इस संकल्प को मारना नहीं, योग को ज्वाला स्वरूप बनाना है तो बहुत एकाग्रता का अभ्यास करना। और इस एकाग्रता के अभ्यास से योग शक्तिशाली होता जाएगा। कोई बातें आएंगी ऐसे लगेगा तो खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी स्थिति में क्यों बिगाड़ू। तो जिन बाबा के बच्चों ने ज्ञान और योग को अच्छी तरह से जीवन में उतारा है, वो उदाहरण स्वरूप बने हैं। उनका आज हम उदाहरण देते हैं। हमारी भाइयों में हमारे दादा विश्व रतन हमारे पास एग्जाम्पल रहे। क्या योगी जीवन थी, जीवन योगी थी, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन जब योग में बैठ जाते थे, सुबह सुबह उनको ड्यूटी दी गई अमृत वेले का योग कराने की। पहले दीदी जी कराती थी छोटे हाल में, दीदी मनमोहिनी, और उनके अव्यक्त होने के बाद दादा की ड्यूटी लगाई थी यहाँ इसी हाल में अधिकतर। दादा एक टिक एक रस 45 मिनट तक स्थिर होकर, ना आंखें हिल रही हैं, ना शरीर हिल रहा है, जैसे दिल दिमाग सब स्थिर है, एकाग्र है। वो योग था, पावरफुल योग। उनको देखने से लगता था ये योगी जीवन है इनके। खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में इतनी समरसता, एक रस स्थिति। लोग कहते थे यही तो नहीं बाबा है, दादा को देख के कहते थे। सिखाता था हम लोगों को, कभी जोर से कभी किसी से बात करते थे ना, हंसते थे तो बुला लेता था इधर आओ। फिर बड़े प्यार से कहता था ये जो हंसते हो ना, इस हंसने में भी विकार होता है, विकारों की वायु होती है। जोर से क्यों हंसते हो, जोर से क्यों बोलते हो, फटफट 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 करके क्यों चलते हो, धरती माँ को क्यों दर्द देते हो। ऐसी शिक्षाएं दादा देता था। बहुत आराम से चलना, देखो कैसे चला जाए, परिश्रम चल रहा है। प्रैक्टिकल जीवन थी ये, हमारे आगे उदाहरण है, एक रस स्थिति के उदाहरण है। कितनी सारी बातें आई होंगी, दादा ने कभी भी मान शान नाम, कोई स्टेज मिले, कोई पूछे, कोई न पूछे, स्थिति अच्छा लडोल एक रस। हमने देखा हमारे सामने दादा, हमारे साथ धोबी घाट किया, हमारे साथ रोटियां पकाई, और इतना एक्यूरेट कोई भी काम किया। उसके बाद धीरे धीरे उनको अकाउंट मिला, डिपार्टमेंट चेंज हुई, लेकिन सब सेवाएं करते हुए कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई डिमांड नहीं, जो दादी कह दे, जो दीदी कह दे, यस, कभी हाँ में ना नहीं हुआ होगा। उनके मुख से कभी शब्द नहीं सुना कि अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, अभी सब घूमने जा रहे हैं, अभी पिकनिक में जा रहे हैं, और दादा को कहा जाता दादा आप यहाँ पे बैठना, आप यहाँ पहरा देना। सब जा रहे हैं घूमने और दादा पहरा दे रहा है। आप समझ सकते हो कैसी स्थिति बनाई होगी। कहती थी, कहता दादा कि जो सेवा मिले, बड़े कह रहे हैं ना, हमको क्वेश्चन नहीं उठाना है, प्रश्न नहीं करना है, अपने चिंतन को क्यों चलाऊं, बाबा को जो देना होगा अपने आप सब दे देगा ना। ऐसी अचल अडोल स्थिति बना लिया, हर बात में अंगत की तरह, कभी हिले डुले नहीं। तो हम सभी भी इनके कदमों पर भी अगर कदम रखते हैं, बड़ों को भी फॉलो करते हैं, तो हमारी स्थिति सबके लिए उदाहरण स्वरूप बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, बाबा ने जो नियम और मर्यादाएं बताई हैं, जो हमारी मूल धारणाएं हैं, तीसरा सब्जेक्ट ज्ञान योग के साथ साथ हमारी निजी धारणा जो मन वचन कर्म की पवित्रता है, उसमें लूज नहीं होना। पवित्रता कई गुणों को अपने आप ले आती है। जो आत्माएं शुभ चिंतन करती, श्रेष्ठ चिंतन करती, पवित्रता को दृढ़ता से अपनाती हैं, उनके आगे कोई भी बात आती है बहुत सहज पार हो जाती है। पवित्रता में एक बल है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। और सेवा को तो आपको बताया कि सेवा करते हुए ऐसे लगे कि बाबा ने सुख देने और सुख लेने की सेवा दी है, सब इससे खुश हों, सब बाबा को पहचाने, अपना जन्म से दधिका ले लें, इसलिए सेवा का चांस मिला है। तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा करो, बहुत सारे साधन हैं। जो शक्ति है, जिस प्रकार की शक्ति है, ऐसा कभी नहीं कहना मेरे पास ये शक्ति नहीं है, बाबा के आगे कभी ऐसे कहना नहीं। जो है, जितनी है, वो बाबा के कार्य में लग जाए। थोड़ी सी चीज भी अगर बाबा के यज्ञ में सफल हो गई तो कई गुना होकर के उसका रिटर्न मिल जाएगा, वो हम लोगों का अनुभव है। तन थोड़ा सा बाबा की सेवा में लगाया, आज तन को बाबा ने स्वस्थ रखा है, जो सेवाएं हमने की है उसका रिटर्न इसी समय मिल रहा है। मन से बाबा कहता मन मना भव करके मनसा सेवा करो, और अगर ज्ञान धन है तो उसको बांटो, स्थूल धन है तो भी सफल हो। जो धन है अविनाशी धन है या सूक्ष्म स्थूल धन है, उसको सफल करो, कहीं भी व्यर्थ न जाए। तो जो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सेवा में रहते हैं, धारणाओं पर जिनका पूरा अटेंशन है, योग के भिन्न भिन्न रीति से प्रयोग करते हैं और ज्ञान स्वरूप होकर के रहते हैं, उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? तो इस फाउंडेशन को मजबूत कर लो और अपनी स्थिति ऐसी बना के जाना, कोई भी हिलाने वाला आ जाए हिलेंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे। बाबा कहता है देखो तुम्हारे सामने अंगद का मिसाल है, हमारे आबू में अचल घर मंदिर है, अचल घर जो किसी भी हालत में हिला डुला नहीं, अंगद है, महावीर है, पांव जमा दिया, कोई भी रावण का सेना नहीं हिला नहीं सकता। निश्चय है कि हम तो भगवान के दूत बन करके आए हैं, पैगंबर हैं, और वो जिसके साथ स्वयं भगवान की शक्ति है, राम की शक्ति है, रावण क्या करेगा? इसलिए निश्चय का फाउंडेशन होने के कारण कह दिया, अगर तुम मेरे पांव को हिला देगा ना तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। वो जानता था सीता तो इसकी कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा निश्चय था ना। तो हम सभी भी अंगद की तरह अचल अडोल रहे, माया कितनी भी बड़े रूप में आए, सुरसासुर के रूप में आए। सुरसासुर का नाम सुना है ना, रामायण में आता है, जब संजीवनी बोटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे ना, तो रावण ने उसको रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि लंका साउथ में और संजीवनी बोटी लानी हिमालय से नॉर्थ से, और एक ही नाइट के अंदर आनी चाहिए, अगर सूर्य निकल आया तो संजीवनी बोटी का महत्व खत्म। अब हनुमान जैसे महावीर को बोला गया तुम जाओ ले आओ, तो रावण ने कहा कि कुछ समय इसको भटका दो तो अपने आप रात पूरी हो जाएगी। भटकाने के लिए उसने असुरों को भेजना शुरू कर दिया। तो एक माता जिसका नाम सुरसासुर था, बहुत भयानक रूप लेकर के, बड़ा मुंह खोल करके हनुमान के आगे आ गई। तो हनुमान जी तो बड़े समझदार थे, होशियार थे, ज्ञानी आत्मा थी, उन्होंने अपना रूप बहुत छोटा बना लिया और कहते हैं उसके मुंह में ऐसे चले गए। तो जब वो मुंह बंद करने लगे तो छोटा रूप था तो नाक से निकल के उड़ के चले गए। ऐसे ऐसे कहानियां बनाई हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि माया भी बड़े बड़े रूप में हम सबके सामने आएगी, रोकने की कोशिश करेगी, प्रयास करेगी, लेकिन हम सब कभी छोटे बन जाएं और कभी बड़े बन जाएं। छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना, बस। महावीर वो है जो बड़े से बड़ी बात को छोटा बना दे, और प्यादा वो है जो बड़ी बड़ी छोटी सी छोटी बात को एकदम पहाड़ बना देता है सोच सोच करके। तो ध्यान रखना, कोई भी बातें आती हैं, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं, सब पार हो जाएंगी। भगवान हमारा साथी है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई बात आए, ऐसे बाबा को साथ ले लो, बाबा की याद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। ठीक है, ऐसी अच्छा लडोल स्थिति बनाना, ऐसे बन करके बाबा को अपने जीवन से, अपने चलन और चेहरे से, एक रस स्थिति से प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। वैसे नमाज शाम का समय है, योग चलेगा, हम आपको 10 मिनट योग करा के फिर उठेंगे। ठीक है, 10 मिनट कराएं, 7 बजे तक कराते, ठीक है, 7 बजे तक। मैं 7 तक कराता हूँ, फिर बहन जी कमेंट्री से कर,
7 से 7:30 हम कराएंगे फिर। चलो बाबा के पास। आदरणीय राजू भाई जी, हम सब की तरफ से आपको बहुत 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 थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ, समझती हूँ कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आया। तपस्या से स्थिति बन सकती है, सुबह तपस्या के फाउंडेशन को पक्का किया और अभी स्थिति बनाने की विधि को अंडरलाइन किया स्वयं के लिए। तो चलो, अभी नुमा शाम का समय है, स्वयं को अलर्ट बना दे, प्राप्ति का समय है। 8 घंटा कॉन्शियसली बाबा के साथ जुड़ने के लिए 4 घंटा बैठ के अभ्यास करना चाहिए। किसने बताया था? गीता बहन जी ने सुबह बताया ना। तो चलो, वो 1.5 घंटा हमको मिला है, हम बहुत प्यार से बाबा को याद करें।
अभी योग के लिए हम सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए दिव्य सितारे का अनुभव करें। योग की संपूर्ण स्टेज है देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अनुभव होना। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं बनती, तब तक परमात्मा के साथ हम कनेक्ट नहीं होते। इसलिए पहले अभ्यास में हम सब मन और बुद्धि को एकाग्र करके अपने भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे को, मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को अनुभव करें और उस लाइट स्वरूप में स्थित होकर के मन और बुद्धि के विमान से अपने वतन को सामने लाएं, जहां बाबा अव्यक्त वतन में हम बच्चों के लिए आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, इस वतन का अनुभव करो। ये लाइट का वतन आपका निजी वतन है, तो लाइट के शरीर से हम उस लाइट के वतन में चलेंगे और कुछ मिनट उस निराकारी वतन का अनुभव करेंगे। तो चलो, हम सभी इस 20 मिनट की यात्रा में तीनों स्थितियों का अनुभव करें। पहले अपने इस लाइट स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, इस देह के पिंजड़े से एकदम न्यारे होकर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस भ्रकुटी आसन पर मैं विराजमान अमूल्य मणि हूँ। मन और बुद्धि मेरी संपूर्ण शक्तियां मेरे नियंत्रण में हैं। मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर चमकता हुआ प्रकाश का सूक्ष्म शरीर है। और मैं सूक्ष्म शरीर से इस साकार वतन से भी पार अपने अव्यक्त वतन में प्यारे बाप दादा के सन्मुख उनकी नजर से निहाल हो रहा हूं, उनका वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। सभी अपने मूल स्वरूप में ज्ञान सूर्य बाबा के सन्मुख चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में उस अखंड ज्योति महत्त्व निराकारी दुनिया का अनुभव करो। वो लौलीन स्थिति का अनुभव करो। सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों के नीचे मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूं। अपने निज स्वरूप में स्थित होकर संकल्पों की गति को भी रोककर अनुभव के सागर में समा जाओ।
बाबा आपको बाबा सभी अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा।